जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय। जय यशोदानन्दन व्रज जन रंजन। जय यशोदानन्दन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सब बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय गौरांगनिताय 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 जय गौरांगनिताय। Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya. Nitai Gaur Haribol, 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 Nitai Gaur. Gaur Premanandi, Harinam Sankirtana Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Kumagyan Timirandasya Gananjana Shalakaya. Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaham Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavascha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhan Vitamsha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatta Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktarunda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Taj, Raivariya Satsang mein aap sabka swagat hai. Vaise taj, tisra Raivar hai. Hum, jo Sunday Feast program shuru kiya hai. Vaise to, aap hamesha yahan aate rehte hain. Kai log regular aate hain. Lekin jo, रविवार ये सत्संग जो है ताकि संघ में आकर भक्तों का जो भक्ति में प्रगति होता है काफी उसमें प्रभाव ज्यादा होता है इसलिए भक्तों के संघ में आकर भजन कीर्तन करना शास्त्र में कहा गया है कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है तो हमने ये तीसरा रविवार है साधु संघ के ऊपर भक्तों के संघ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो हम अब तक कैसे भक्तों के संघ में आने से हमें मार्गदर्शन मिलता है डायरेक्शन मिलता है जीवन के लिए जैसे पिछली बार हमने श्रील प्रभुपाद का उदाहरण दिया था कि कैसे श्रील प्रभुपाद भक्तिजान सरस्वती ठाकुर से मिले और श्रील प्रभुपाद आज हम देखते हैं कि सारे संसार में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना करके सारे संसार में उसका प्रचार हो रहा है लेकिन कैसे साधु के संग में गए श्रील प्रभुपाद भक्तिदान सरस्वती ठाकुर के संग में गए वैसे श्रील व्यास देव जी को भी कैसे श्री नारद मुनि से उनको मार्गदर्शन मिला क्योंकि चार वेद अठारह पुराण सारे लिखने के बाद भी श्री व्यासदेव को संतुष्टता नहीं थी लेकिन जब नारद मुनि से चर्चा हो गई तो उन्हें पता चला कि मुझे ऐसा कोई ग्रंथ लिखना है जिससे लोग इस संसार में बंधन में न गिरकर इससे बाहर हो जाएंगे तो उसके बाद नारद मुनि मिलने के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत का लिखान किया तो कैसे मार्गदर्शन डायरेक्शन मिलता है और दूसरा होता है कि हम भक्तों के संग में आने से क्या होता है हमें शोक मोह भयाप हो क्यों क्योंकि हम ऐसा वही सूर्यमानायाम जब भक्तों के संग में आते हैं तो क्या होता है हम भगवान कृष्ण की भगवान श्री रामचंद्र की लीलाओं की चर्चा करते हैं ऐसा वही सूर्यमानायाम कृष्ण परम पुरुष है भगवान कृष्ण की लीला कथा गुणगान करने से क्या होता है, भक्ति उत्पत्ति पुंसा, अपने हृदय में भक्ति का उत्पन्न होता है, भक्ति का निर्माण होता है। उससे क्या होता है, भक्ति हृदय में निर्माण होने से शोक मोह भयापह, हम भक्तों के संग में आने से क्या होता है, शोक मोह और भय से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में कोई शोक, जिसके हृदय में एक बार कृष्ण वास कर गए, श्री राम वास कर गए, फिर उसके हृदय में भय, कौन सा भय होता है, भविष्य का भय होता है, मोह वर्तमान का मोह होता है, और हमेशा शोक होता है किसका, भूतकाल का शोक होता है। लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण लीला कथा कीर्तन में जब मग्न हो जाता है, हमेशा कथा कीर्तन करने लगता है, तो भक्ति उत्पत्ति पुंसा, हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है भगवान के बारे में, और शोक मोह और भय से व्यक्ति मुक्त होता है। तीसरा हमने चर्चा की थी कैसे व्यक्ति भौतिक संसार में होते हुए भी, लेकिन भक्तों के संग में आने से, भगवान की लीला कथा गुणगान श्रवण करने से जीवन में हमेशा यश का अनुभव करता है, विक्ट्री का अनुभव करता है। हमने पिछली बार श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, और इनके जे कैसे वो लंदन में गए और जॉर्ज हैरिसन इनसे मिले, और कैसे सारे संसार में ये कृष्ण भावना का प्रचार हुआ। और चौथा हमने देखा था कि जब हम भक्तों के संग में आते हैं, तो क्योंकि भक्त हमेशा भगवान के बारे में, भगवान के सेवा के बारे में, भगवान के प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा करते रहते हैं, उनकी हमेशा उसकी कल्पना करते रहते हैं, और उनके पास बहुत सारे सेवाएं रहती हैं, और जब भक्तों के संग में जाते हैं तो क्या होता है, हमें सेवा का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे आप यहाँ देख रहे कि अभी मंदिर में आए हैं, भक्तों के संग में आए, तो यहाँ चंदन घिस रहे हैं नहीं, और थोड़े हम प्रगति करते, फिर बाद में नीचे भगवान के आरती प्लेट बनानी है, बैकअप में से वो जाके कर सकते हैं। यहाँ पे आते फिर बाद में चलो सब लोग प्रसाद ले रहे, तो प्रसाद सर्विंग के लिए सेवा मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ सेवा मिलता है। और जब सेवा हम लोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा ये शरीर जो भौतिक शरीर है, भौतिक पंच महाभूतों से बना शरीर है, इसके प्रति हमारी बहुत अटैचमेंट है, आसक्ति है, बराबर ना। सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं, ये शरीर से करते हैं नहीं, तो ये जब भगवान के सेवा में लगता है, किसी न किसी प्रकार से सेवा में लगता है, तो हमारा अटैचमेंट, हमारी आसक्ति, प्रेम जो है भगवान के प्रति बढ़ जाता है, जिसलिए हमारा भगवान के साथ प्रेम जुड़ने का, प्रेम निर्माण होने का जो साधन है वो क्या है, सेवा है। इसलिए भगवद्गीता में भी बताया गया कि कैसे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, गुरु के पास जा सकते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्वदर्शिनः। जब हमें ज्ञान कब मिलता है, तो ज्ञान अगर प्राप्त करना है गुरु से या भक्तों से, तो क्या होना चाहिए, हमारे पास तीन क्वालिफिकेशन होना है, तीन पात्रता हमारे पास होनी चाहिए। कौन सी तीन पात्रता है, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवया। तीन चीज हमेशा अगर अपने पास है तो ज्ञान प्राप्त होना, भगवान का प्रेम प्राप्त होना आसान हो जाता है। तो प्रणिपात मतलब नम्रता, नम्रता से, ह्यूमिलिटी से हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। दूसरा परिप्रश्न, क्वेश्चंस, क्लास के बाद होता है या कभी भी हम भक्तों से मिलते हैं, तो हमारे मन में जो भी प्रश्न है उसको पूछना चाहिए, क्योंकि डाउट्स आर लाइक डीमंस, ये जो शंकाएं होती है ये राक्षस की तरह, अगर उस समय पे उसको आप उसका ठीक से उसका उपाय न सोचो, तो धीरे धीरे क्या हो, शंका बढ़ जाती है, डाउट जो बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे वो क्या होते हैं, डिमांड्स बन जाते हैं, तो हम पूरी तरह से भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति अविश्वास हो जाता है। इसलिए हमें परिप्रश्न और सेवया, और क्या होता है, सेवा करनी चाहिए, तभी क्या होता है, हमारा अटैचमेंट भगवान के प्रति बढ़ जाता है। अभी हमारा घर गृहस्थी के प्रति अटैचमेंट होता है, आसक्ति होती है, क्यों, क्योंकि हम उनकी सेवा करते हैं, हम जिनकी भी सेवा में रहते हैं उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, उनके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है। वैसे भक्तों के संग में आने से क्या होता है, हम बहुत सारी अलग अलग सेवा में लगते हैं, और सेवा में लगने से क्या होता है, हमारा अटैच, भले हमें कोई कोऑर्डिनेटर सेवा दे रहा है, भले हमें कोई व्यक्ति सेवा दे रहा है, लेकिन अटैचमेंट किसके प्रति बढ़ता है? वो कोऑर्डिनेटर के प्रति अटैचमेंट नहीं बढ़ता है, भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ता है, क्योंकि सेवा वो कोऑर्डिनेटर की नहीं हो रही है, सेवा किसकी हो रही है? जो भगवान है, भगवान है, उनकी सेवा हो रही है। इसलिए बहुत सारा सेवा करने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। और ये भी हमने चर्चा की थी कि भक्तों के संग में आने से क्या होता है, हमारा हृदय परिवर्तन होता है, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। हमने भी चर्चा की थी कैसे जो रत्नाकर थे, जो मराठी में उनको वाल्या कोड़े कहते हैं, जब नारद मुनि उनको मिले तो कैसे एक बड़ा खूंखार डाका डालने वाला था, लोगों को मारने वाला था, लेकिन जैसे नारद मुनि से उनकी भेंट हुई तो क्या हो गया? तो नारद मुनि ने जब उनको कहा कि आपके सभी लोग आपके पाप जो आप पाप कर्म कर रहे हो इसमें भाग लेंगे, बोले हाँ क्यों नहीं, उनके लिए करो तो वही सब वो भाग लेंगे इसमें, बोले नहीं। तो जब पूछने जाते हैं तो कहते घर वाले सब बोलते कि नहीं, ये तो आप हमारे स्वामी हैं, पति हैं, हमारे बेटे हैं, तो आपका काम है हमारा भरण पोषण करना, तो हम क्यों आपके पाप में भाग लेंगे। तो फिर नारद मुनि के पास जाके बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई भाग लेने वाला, आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है आप राम नाम का जप करो। तो रत्नाकर इतना पाप कर्म में मग्न था कि वो राम नाम भी नहीं ले पा रहा था। तभी उन्होंने क्या किया कि आप राम नहीं बोल सकते, ठीक है आप मरा बोलो। नारद मुनि उनसे कहते हैं, और वो क्या कि मरा 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 बोलते बोलते राम राम बोलने लगे। तो क्या होता है, हृदय परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, भक्तों के संग में आने से ये होता है। तो कई उदाहरण जो हम चर्चा के आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भक्तों के संग में आने से हमें जो उपदेश प्राप्त होते हैं, उस उपदेश से हमें अलग अलग प्रकार के साक्षात्कार अपने जीवन में, भक्तों के संग में आने से जब सुनते हैं उनसे तो कई बार हमें टर्निंग पॉइंट होता है हमारे जीवन का, ऐसे कुछ साक्षात्कार मिलते हैं, ऐसे कोई कोई अनुभव ने अपने जीवन में आते हैं कि लगता है अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा। ऐसे भक्तों के संग में आने से हमें पता चलता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, हमारा जो जन्म है वो अज्ञान में है। वैसे तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जंतुर प्रार्थना के जीव जब माता के गर्भ में होता है तो इतनी वेदना उसे होती, इतना तकलीफ उसे होता है, तो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे पूर्व कर्म के कारण मैं गर्भवास भोग रहा हूँ। कि सोचिए, जैसे एक बार हम लोग कुछ बच्चों से चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा कि ये जन्म कितना दुखदायक है। तो कॉलेज का लड़का सामने बोलता है, प्रभु जी जन्म कहाँ दुखदायक होता है, वो तो हैप्पी बर्थडे होता है ना। बर्थडे तो हैप्पी होता है, तो आप कैसे कहते हैं कि जन्म दुखदायक होता है? मैंने कहा कि अपने माता से जरा पूछो, ये जन्म जो है सुखदायक होता है दुखदायक होता है? अगर सुख देने वाला होता तो लेबर प्लेजर कहा गया होता, प्रसूति की उसको आनंद कहा गया होता, प्रसूति की वेदना नहीं कहा जाता उसे। लेकिन जब ये इतना उसको दुख होता है, रक्त मल मूत्र ऐसे इसमें सर नीचे है पैर ऊपर है, ऐसी अवस्था में वो 9 महीने तक वहाँ रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि बहुत दुख है, ऐसा कभी कर्म एक बार मुझे बाहर निकालो, ऐसा कोई कर्म नहीं करूँगा जिससे वापस एक गर्भवास भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, जब वो बाहर आता है इतनी यातना से वो बाहर आ जाता है कि सब भूल जाता है, और सगे संगम बंदे आसपास आते और कहते हैप्पी बर्थडे टू यू, तो उसको लगता है संसार कितना आनंद देने वाला है। तो यहाँ पर ओम अज्ञान थी, तो अज्ञान में कुछ पता नहीं होता है, कुछ ज्ञान नहीं होता है, सब कुछ यहाँ पर आके उसे सीखना पड़ता है। ये माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, ये पत्थर है, लकड़ी है, सब कुछ वो सीखता ओम अज्ञान। और सबसे बड़ा अज्ञान क्या होता है जीवन में, कि भूल जाता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, ये पूरी तरह से भूल जाता है। इसलिए कहा कि ओम अज्ञान तिमिर, तिमिर अंधकार, पूरा ब्लैकआउट, कुछ भी उसे समझता नहीं है। लेकिन जब हम भक्तों के संग में आते हैं, गुरु के संपर्क में आते हैं, तो क्या आता है, ज्ञानांजन शलाकया। गुरु क्या करते हैं, ज्ञान की मशाल लेकर हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो ये भक्तों के संग में आने से कई बार कुछ चीज़ें हम अज्ञान में करते रहते हैं, कुछ समय तक चलता है, कुछ सालों तो ऐसा ही चलता है। जैसे एक बार कुछ लोग जो है, एक व्यक्ति बिल्डिंग से देख रहा है कि नीचे दो लोग क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति आता है खड्डा खोदता है और दूसरा आकर उसमें मिट्टी डाल के वो खड्डा भर देता है। तो जो बिल्डिंग से ऊपर देखता है व्यक्ति बोलता है कि क्या पागलपन चल रहा है, एक व्यक्ति आता है खड्डा खोद देता है और दूसरा आकर वापस में मिट्टी भर देता है। तो नीचे आकर पूछता है, आप लोग क्या कर रहे हैं, फुकट में श्रम ये वही केवलम क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्या व्यर्थ मेहनत कर, बोले क्यों, बोले ये आप एक खड्डा कर खोदता है दूसरा कर मिट्टी भर देता है, क्या चल रहा है। बोले देखो हम लोग का तीन लोग का टीम है, पहला व्यक्ति खड्डा खोदेगा, दूसरा पेड़ लगाएगा, तीसरा मट्टी डालेगा, लेकिन एक बीच वाला आदमी आया ना तो, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारा काम चल रहा है, पहला खड्डा खोदने का, दूसरा बीच वाला नहीं आया पेड़ लगाने वाला, लेकिन तीसरा काम कर रहा है। तो कई बार अपने जीवन में हम लोग खाली करने के लिए काम करते रहते हैं, मंदिर में जाने के लिए जाते हैं, हम लोग खाली कुछ बहुत सारी चीज़ें जीवन में करने के लिए करते हैं, लेकिन क्यों करना है, क्यों उसके पीछे महत्व क्या है, कई बार पता ना होने से लोग जो है, जैसे गांव में सब जगह पे ऐसा होता है कि घर में कोई जब देहांत होता है तो मंदिर में नहीं जाते हैं। तो मैं कई बार लोगों को पूछा, एक बार हम लोग यहाँ पास के गांव में सत्संग कर रहे थे, शाम को बड़ा प्रोग्राम था, हरिनाम कर रहे, पीछे हलवा प्रसाद बांट रहे, तो एक भी गाँव में एक आदमी भी प्रसाद नहीं ले रहे। तो हमने पूछा क्या हो गया, अपने गाँव में डेथ हो गया इसलिए हम लोग प्रसाद नहीं ले सकता। तो मैं बोला अच्छा ऐसा है, फिर बाद में पूछा तुम आप लोग का टीवी तो क्यों, एक क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे भी कारण है, जब घर में डेथ होता है तो शोक होता है, शोक होता है, दुख होता है, और ऐसे अवस्था में, दुखी अवस्था में जब हम किससे प्रेम करते हैं तो उसके उसके सामने नहीं जाते हैं, इसलिए भगवान को दुख नहीं होना चाहिए। हमारा हमारे हृदय में बहुत शोक है, ये जड़ भावना जो है, देह भावना बहुत ज़्यादा है, शोक है, तो हमारा दुख जो भगवान को पता न चले, भगवान को सब कुछ पता है फिर भी भगवान को पता न चले, इसलिए ऐसे शोक की अवस्था में हम सामने नहीं जाते हैं, इसलिए मंदिर में नहीं जाते। लेकिन जैसे घर में देखते हैं, जब घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान जब घर किचन में कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम मेहमान को पता नहीं चलने देते, तो मेहमान हाँ खाओ खाओ बहुत है और लो और लो, किचन में कुछ ख़त्म हो रहा है पता नहीं चलने देते, ताकि हम उनसे प्रेम करते हैं तो उनको दुख नहीं लगना चाहिए, अरे कुछ ख़त्म हो गया घर किचन में। तो मान लो मेहमान की भी हम इतनी चिंता करते, उनको कुछ हमारा दुख पता नहीं चाहिए, कुछ कमी पता नहीं चलना चाहिए, वैसे भगवान को भी हमारा दुख पता नहीं चलना चाहिए, उनको हमारा शोक जो है भगवान को शोक नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसी अवस्था में दुख मंदिर में नहीं जाते। क्योंकि हमारे वैदिक संस्कृति में इतना एक दूसरे से लगाव होता था, अभी भी है, इतना लगाव होता है, ताकि कुछ कितने दिन तक मैं लोग जो है रोते रहते थे, शोक करते रहते थे, तो 8-10 दिन उसके लिए होता ही है, शोक करने के लिए होता है। लेकिन आजकल जब पूछेंगे तो किसको पता ही नहीं रहता है, गाँव में घर में कई बार वो टीवी चल रहा है, सब मजा चल रहा है, सब एंजॉय कर रहे, गाँव की गप्पा सब कर रहे, लेकिन मंदिर में नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है उसके पीछे कारण भी तो पता होना चाहिए। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो है जीवन में करते हैं लेकिन क्यों करते हैं पता नहीं होता है। तो ऐसे इस लेकिन भक्तों के संग में आते हैं तो इसका ज्ञान होता है, ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे शास्त्र में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि कैसे जब राजा रहुगुण जड़ भरत महाराज से मिले, जड़ भरत से मिले, तो जड़ भरत जो है पहले तो एक भरत महाराज थे, बड़े साम्राज्य राजा थे, लेकिन जब वो सारा संसार छोड़ के गंडकी नदी के किनारे गए तो एक हरण को जब उन्होंने देखा कि शेर ने बड़ा दहाड़ लगाया और हरिन जो है पानी में गिर गया, लेकिन वो गर्भवती थी हरिन, हरिणी, तो उसका बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन हरिण जो है बह के चले गए। तो छोटा जो बछड़ा था उसको उन्होंने, जो महाराज थे भरत महाराज, उन्होंने सारे संसार को त्याग कर वो वन में खाली भगवान का ध्यान चिंतन भक्ति करने गए थे। तो वैसे में वो बछड़े को पकड़ लिया। तो ये जो करुणा है जो आवश्यक है, लेकिन जब धीरे धीरे क्या होने लगा, वो बच्चे का इतना ख्याल रखते लगे, इतने ख्याल रखने लगे कि अपना जो नामस्मरण था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस संसार के जो बच्चे का जो देखभाल करने के इसमें इतने व्यस्त हो गए, इतने व्यस्त हो गए कि धीरे धीरे वो उनका बेड बैग वो खींचने लगा, उनका माला खींचने लगा। फिर बाद में वो धीरे धीरे वो जब भी उनका बंद हो गया, और बछड़े का ही ध्यान रखने में, और बाद में जैसे कोई विरह में भगवान का चिंतन करता है, तो वैसे वो हरण जो बछड़ा था उसके बारे में चिंतन करने लगे। और धीरे धीरे जब उद्धत्व आ गया, तो वो जो बछड़ा था वो जंगल में चला गया, तो उसके पीछे वो भागने लगे, गिरने लगे, और उसके विरह में, बछड़े के विरह में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो इस संसार में कभी कभी जो भौतिक कार्यकलाप है उसके प्रति आकर्षित इतना हो जाते हैं कि जो मुख्य उद्देश्य उसको भूल जाते हैं। तो जो है उनको हरण का जन्म मिला, लेकिन अभी हरण के जन्म में भी उनको पता था कि मैंने पिछले बार कुछ गलती की है, इसलिए जो हरण के शरीर में वो क्या करते थे, जहाँ ऋषि मुनि ध्यान करते, जप करते थे, भजन कीर्तन करते, उनके साथ जाके बैठते थे। तो ऐसे करते करते वापस जब हरिण का शरीर उन्होंने छोड़ा, तब उनको जो है ये जड़ भरत का मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। तो वो और भी ज़्यादा समझदार हो गए कि हम इस संसार में किसी चीज़ में आसक्त होना ही नहीं है। तो ऐसे जब अपने पिता के पास रहते थे, तो जब बोलते थे कि खाने से पहले हाथ धो लो, तो खाने से पहले, खाने के बाद, तो इस प्रकार से हाथ धोना, ये सब मतलब ऐसे कुछ भी जो है शुद्धता रखना, ये सब नहीं करते थे। तो इस प्रकार पूरी तरह से हमेशा मन में, लेकिन भगवान का हमेशा चिंतन करते रहते थे। तो उनको जब ये जड़ भरत जो थे, उनको जब राजा रघुगण का भेंट हुआ, तो राजा रघुगण की पालकी जा रहे थे, चार लोग जो पालकी को पकड़े हुए थे, और जब पालकी को ले जा रहे थे, तो राजा रघुगुना था वो देखा कि एक व्यक्ति जो उनमें से थोड़ा बीमार हो गया, तो जड़ भरत को उन्होंने पकड़ा दिया, ये थोड़ा हट्टा कट्टा दिख रहा है, उसको लगा देते पालके में। जैसे जड़ भरत ने पालके पकड़े, तो वो जब पालके को ले जा रहे थे, तो बीच में जो उन्होंने जगह चींटी है, तो एक पैर इधर चींटी को बचाने के लिए एक पैर इधर डाल रहे, एक पैर उधर डाल रहे, तो उससे क्या हो रहा था, जब पालके के चार लोग है उसमें एक व्यक्ति भी तो यहाँ वहाँ हिल जाता है, तो क्या होता है, पालके हिल जाते हैं, और जो अंदर बैठा है पालके में उसको तकलीफ होने लगते हैं। तो जो उसे डांटता है कि आपको अक्ल नहीं क्या, दिखने में इतना हड्डा कट्टा है, लेकिन पालकी नहीं ठीक से ढो पा रहा है। तब राजा रघुगुना जो है उनको जड़ भरत जब उपदेश करते हैं कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, किस प्रकार से हम ये शरीर नहीं आत्मा है, जब व्यक्ति ये शरीर जो धारण किया है तो ये भौतिक आवरण है। तीन प्रकार के हमारे जो शरीर है, एक स्थूल शरीर है जो हम एक दूसरे से आँखों से देखते हैं, पंच महाभूतों का है, भूमि आप तेज नल वायु है, उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार है, उसके अंदर और आत्मा है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति का देहांत हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बेचारा बहुत अच्छा था, चला गया। कौन चला गया, जिसको 50, 60, 100 साल हमने देखा, प्यार किया, वो तो वहीं पड़े हैं, वही हाथ है, वही पैर है, वही आँख है, फिर भी प्यार नहीं कर रहे, वही फिर भी बोलने रहे, मतलब कौन चला जाता है, जीव आत्मा मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर के साथ चला जाता है। जिस प्रकार से उनको जब उपदेश करते हैं, तो राजा रघुगण देखते कि अरे ये तो साधारण एक भिक्षुक लग रहा था, लेकिन ये जो बात जो बता रहे हैं ये तो बड़ी ज्ञान की बात है। तो राजा रघुगण को साक्षात्कार, जो जड़ भावना में थे, देह भावना में थे, उससे ऊपर उड़ गए और उनको प्रणाम करने लगे। वैसे हम देखते कि अर्जुन और भगवान कृष्ण, अर्जुन मोहित तो हो गए थे युद्ध के पहले। अर्जुन पूरी तरह से जो इतनी तैयारी की थी, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इतना कष्ट सहने के बाद भी अर्जुन जब युद्ध के लिए आए, तो बोले कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मेरे जो गात्र है, इंद्रिय जो है शिथिल हो रही है, मेरा शरीर कंपन हो रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं करे, मुझे मुझे युद्ध नहीं करना है, क्या हो गया? मोहित हो गए, ये शरीर भावना के स्तर पे नाती संगत संबंध के प्रति वो मोहित हो गया और उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण जब उनको उपदेश करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण उनको कोई धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको उन्होंने कुछ गदा के लिए प्रेरित किया, उनको उन्होंने खाली किया जो आत्मबल खो चुके थे, विल पावर जो खोए थे उसको वापस उन्होंने जागृत किया। तो वैसे हम जब भक्तों के संग में आते हैं तो क्या होता है, हमें साक्षात्कार, बहुत सारा जो चीज़ें हमें ज्ञान नहीं है चीज़ों के बारे में, उसका अनुभव होने लगता है। वो ज्ञान प्राप्त होने से व्यक्ति जो भव बंधन है उससे मुक्त होता है। और भक्तों के संग में आने से क्या होता है कि हम जब कथा करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, उच्च भाव जो है वो प्रकट होता है। जब कथा कीर्तन होता है तो अपना अपने आप ही जो जड़ भाव, जड़ बहुत बार देह भावना में है, लेकिन जब सत्संग होता है तो व्यक्ति अपने आप ही वो भावना जो है ऊंचा हो जाता है। और जैसे जब विमान उड़ता है, जब ये फ्लाइट जब ऊपर उड़ता है तो फ्लाइट उड़ने से पहले, विमान उड़ने से पहले क्या होता है, हवाई जहाज सारी बिल्डिंग बड़ी बड़ी लगती है, लेकिन जब हवाई जहाज ऊपर जाता है तो बिल्डिंग छोटी छोटी हो जाती है। तो जब हमारा ये भाव जब एक ज्ञान की वजह से ऊपर हो जाता है, उड़ जाता है, तो शरीर भावना के स्तर पे जो समस्या है वो छोटी छोटी लगने लगती है। हम एक बार एक गांव गए थे, उनका बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, तो थोड़ा सत्संग करने गए थे। वो लोग साउथ इंडिया टूर के लिए गए थे, 8-9 साल के एक लड़का और लड़की, दो बच्चे थे। तो जब वो बस आ रही थी तो आते आते तो बच्चे जो पीछे बैठे थे, लेकिन कुछ ऐसे ही कुछ मोबाइल चार्ज करने के लिए आगे चले, ड्राइवर के उधर चले गए, और अचानक से कुछ सामने आ गया, इतना ज़ोर से उसने ब्रेक मारा कि दोनों बच्चे कांच टूट के आगे गिर गए और पूरा बस के नीचे चले गए, दोनों बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। नहीं, अंबाड़ी पास के गांव में रहते थे, तो हमको पता चला, तो हमारे भक्तों के रिलेटिव्स में आते थे, तो हम लोग जब चले गए तो वहाँ थोड़ा हरिनाम संकीर्तन किया, थोड़ा सत्संग किया, थोड़ा आत्मा के बारे में थोड़ी चर्चा की। तो दोनों माता पिता सत्संग के बाद आकर कहने लगे कि आप आकर जो 1-1.5 घंटे का जो सत्संग किए हैं उससे हृदय इतना हल्का हुआ है, हम ऐसा नहीं कि ये जो घटना हुई तो उसको जीवन में भूल तो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए बहुत हल्का हुआ हृदय, मन जो हल्का हुआ। क्योंकि कई बार लोग आते हैं वही चीज़ रिपीट करते हैं, वही पूछते हैं, हमको बार बार दिन में कई बार वही से प्रसंग को दोहराना पड़ता है कि कैसे गाड़ी रुकी थी, कैसे मतलब वो प्रसंग को हम भूलना चाहते हैं, लेकिन बार बार वही चीज़ याद कराते हैं। लोग आते हैं पूछते कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसे गिरा, तो नहीं याद करना चाहिए, वापस वही याद आता है। लेकिन आप जो थोड़े समय के लिए जो 1-1.5 घंटे के लिए आपने जो हरिनाम किया, सत्संग किया, उससे कुछ समय के लिए हम लोग भूल पाए और इसकी वजह से क्या हृदय हल्का हुआ, मन हल्का हुआ। तो ये जो है सब सत्संग में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तो क्या होता है, ये जो ज्ञान है, जो हरिनाम है, हमारे हृदय की जड़ होता है। क्योंकि जब शोक होता है तो व्यक्ति का ऐसा ना कि व्यक्ति का वजन नहीं बढ़ता है, लेकिन हृदय जड़ हो जाता है, देह भावना बढ़ जाती है। शोक से क्या होता है, हृदय जड़ हो जाता है, और हमें अपने आप व्यक्ति का जो एक्शन, जो उसका एक्टिविटीज़ है, उसका जो कार्य करने का जो स्पीड है, वो अपने आप ढीला हो जाता है, अपने आप व्यक्ति रुक जाता है जब शोक होता है। जब आनंद होता है तो व्यक्ति का स्पीड बढ़ जाता है, कार्य करने का स्पीड भी बढ़ जाता है। जब शोक हो जाता है व्यक्ति रुक जाता है, अपने आप ही उसका सब कार्यकलाप भी धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि सताम प्रसंगात वीर्य संविदो भवंत हृत्कर्ण रसायन कथा। जब भक्तों के संग में आते हैं तो क्या होता है, ये जो कथा है भगवान की ला कथा कीर्तन जो है उसको श्रवण करने से धीरे जीव अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमेशन्ति। धीरे हृदय में क्या होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है और भगवान की ला कथा श्रवण करने के बारे में हमें धीरे धीरे आनंद आने लगता है। और खाली ऐसा नहीं कि भक्तों को सर्व सामान्य लोगों को भगवान की कथा में आनंद आता है, स्वयं भगवान कथा में आनंद लेते हैं। रामायण में एक बार प्रसंग आता है, जब लव कुश वाल्मीकि ऋषि से जब रामायण की कथा उन्होंने श्रवण की, पूरा रामायण उन्होंने पठन किया, 24,000 श्लोक उन्होंने जब उसका पूरा कथा गीत के रूप में जब वो करने लगे, तो अयोध्या के अलग अलग भाग में जाकर वो रामायण का कीर्तन करने लगे, कथा करने लगे गीत के रूप में। और धीरे धीरे जब भरत महाराज ने सुना कि इतना सुंदर गायन करते, जब वो लव कुश जब गली गली में जाते थे तो लोग अपना सारा कार्यकलाप सब छोड़ के लव कुश को सुनने आते थे, तो भरत महाराज को लगा चलो क्यों नहीं हम उनको भगवान श्री रामचंद्र के सामने जाकर वह महल में, राजमहल में उनकी कथा हो जाए। तो उनको कहते कि आप कृपा करके राजमहल में आइए। तो वहाँ भगवान श्री रामचंद्र सिंहासन पर बैठे, सारी अयोध्या की प्रजा अलग अलग आसन पर बैठकर, और लव कुश के लिए खास स्पेशल आसन बनाया गया। और जब उन्होंने लव कुश ने रामायण का कथा का वर्णन करना शुरू कर दिया, तो रामायण जो है करुणा रस से भरा हुआ है, और इतना नहीं खाली करुण रस नहीं, वीर रस भी है। जब हनुमान जी का रावण के साथ युद्ध होता है, और अलग अलग सूर्य का उनके जो सेनापति से युद्ध होता है, तो इसमें वीर रस भी है, लेकिन करुण रस जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वीर रस हास्य रस भी है। जैसे एक बार वानर सेना जब वापस आती है, तो वापस आते समय वो लोग चर्चा करते हैं, मैंने इस राक्षस को ऐसा बड़ा पहाड़ लेके उस पर उसको कुचल दिया। एक वानर कहते हैं अरे मैंने तो एक बड़ा पेड़ लेके उसको घुसा दिया, अलग अलग प्रकार से लोग कहते हैं। तो एक कहता है कि एक वानर बोलता ही नहीं है, तो दूसरा वानर जाके उसको बोलता रहे बाकी लोग ने इतनी वीरता से इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, तुमने कुछ किया नहीं लगता है, कुछ बोलता नहीं है। बोलते मैंने भी मारा, मैंने तुमने कैसे मारा, मैंने पहले उसके मैंने पैर काट दिए, बोला अच्छा, फिर बाद में उसके दोनों हाथ काट दिए, फिर दाहिना हाथ काटा, फिर बाद में बायां हाथ काटा। तो बोलता अरे पहले मुंडी काट देता तो सब करने की जरूरत नहीं, वो पहले से किसी ने काट के रखा था तो उन्हें पहले से किसी ने, तो उसमें ऐसे नहीं कि रावण में खाली करुण रस और खाली वीर रस, उसमें हास्य रस भी है। तो लोग तो इस प्रकार से लव कुश जो इतना सुंदर उसका रामायण का वर्णन करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र देखते हैं कि इतने जो वहाँ पे प्रजा इतनी खुश है, इतने आनंद में है, तो कोई जब हंसते हैं तो इसकी पेट पे हाथ मारते हैं, तो कोई इसके गोद में हाथ मारते हैं, तो कोई हंस रहा है, कोई पेट पकड़ के हंस रहा है, तो इस प्रकार कोई रो रहा है। भगवान श्री रामचंद्र देखते हैं कि सारी प्रजा इतना आनंद ले रही है, लेकिन मैं राज सिंहासन के ऊपर बैठा हूँ, तो इस प्रकार का मुझे आसपास उसको अक्का हाथ कहाँ मारेंगे, या कुछ रोना तो कैसे रोएंगे सबके सामने। तो इसलिए भगवान श्री रामचंद्र कहते कि मुझे भी प्रजा के साथ जाके बैठना चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जब नीचे बैठ सोच लगे आसन से उठ जाऊँ तो क्या होगा, राजा उठ गया तो सारी प्रजा उठ जाएगी, तो आसन से उठ भी नहीं सकते नीचे बैठने के लिए। तो इसलिए भगवान श्री रामचंद्र क्या करते हैं, अपने सारे जो गहने थे उसको एकदम अच्छे पकड़ के रखते हैं, ताकि कुछ आवाज़ भी नहीं आना चाहिए नीचे उतरते समय। तो पूरा ऐसा पकड़ के एकदम अपने आप को, और धीरे धीरे खिसकते कि एकदम नीचे जाके प्रजा में बैठ गए। और जब इतना हास्य कलर हो रहा था, कोई रो रहा था, कोई वीर जब युद्ध चल रहा था, कोई दांत ओट खा रहे, तो सब देखकर भगवान श्री रामचंद्र भी उनके बाजू वाला जो उनके पीठ पे हाथ मारता है, तो भगवान श्री रामचंद्र उसके पैर पे हाथ मारते हैं, तो इस प्रकार के सब चल रहा है। और जैसे लव कुश का कथा खत्म हो गया, तो सब लोग देखे भगवान श्री रामचंद्र आसन के, तो आसन पे कोई है नहीं, सिंहासन पे कोई नहीं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र नीचे बैठे थे। तो बाद में श्री रामचंद्र वहाँ से उठ के फिर वापस आसन के ऊपर जाके बैठ गए। तो ये भक्तों के संग में जब कथा होती है, तो भगवान स्वयं भी उसका आनंद लेते हैं। जैसे एक बार रंगनाथ मंदिर में वहाँ नियमित रूप से उनकी पालखी निकलती है, भगवान रंगनाथ की जो उत्सव मूर्ति होती है उसकी हमेशा पालखी निकलती है। तो ये पालखी जब जा रहे थे, तो पालकी में आज भी आप दक्षिण भारत में जाएंगे साउथ इंडिया में, तो जब ये पालकी निकलते हाथी होते हैं, अलग अलग जो साउथ इंडियन जो बाजे होते हैं जो बजाने वाले, सब इतना जल्लोश होता है उसमें पालकी में, तो ऐसा लगता है कोई शादी की वरात जा बारात जा रहे हैं, ऐसा वहाँ पे उत्सव होता है जब पालकी निकलती है। तो जब ये जा रहा था तो वहाँ चंद्र पुष्करणी करके एक तालाब है, तो वहाँ कुछ वैष्णव भक्तगण जो है कथा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। तो जैसे पालकी पास में आ गए तो उतना आवाज जो है बाजे का ज़्यादा बढ़ गया, तो उनका जो कथा जो है वो नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में वो बोलता, अरे ये इतना वाद्य बज रहा है तो हम लोग कथा नहीं कर पा रहे, भगवान की कथा नहीं सुन पा रहे, ये डिस्टर्ब हो रहा है। वो उठ के खड़े हो गए, उन्होंने प्रणाम किया भगवान के पालकी को, कि बाद में कहने लगे, अरे इतना समय हम श्रवण नहीं कर पाए। तो जैसे ही भगवान श्री रंगनाथ को ये पता चला कि मेरे जो भक्त है वहाँ पे, उनका जो मच्छिंद्र प्रणव स्वामी करके जो बड़े संत थे श्री संप्रदाय के, वो वहाँ पे कथा कर रहे थे, तो दूसरे दिन भगवान रंगनाथ जो पुजारी थे उनके स्वप्न में आए और उनको कहा कि आप जाकर जो मच्छिंद्र प्रणव जो स्वामी हैं उनको कहो कि 1 साल मंदिर में आके कथा करें। तो उसके बाद वो जाकर वो जो स्वामी हैं उनको कहा कि आप जाके मंदिर में कथा करो, भगवान स्वयं रंगनाथ जी की इच्छा है, मंदिर में कथा करो। और उन्होंने पुजारी को ये भी बताया कि 1 साल तक, जब तक इनकी कथा चल रही है 1 साल, तब तक मेरी पालकी नहीं निकलेगी, मैं स्वयं यहाँ कथा श्रवण करूँगा। तो 1 साल तक वो वहाँ पर कथा चलते रहे, और बाद में 1 साल के बाद स्वयं रंगनाथ छोटे बालक के रूप में आकर उनको मंत्र दिए, और वही मंत्र आज भी जो उनका संप्रदाय है, जो खासकर जो शाखा है उसमें आज भी वो मंत्र दिया जाता है। तो इस प्रकार से स्वयं भगवान जो भक्तों के संग में जब कथा चलती है, इसलिए जब नारद मुनि पूछते भगवान से आप कहाँ हो, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, नाहम योगिनाम हृदयेषु, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं हूँ, यत्र गायन्ति मत भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ पर मेरे भक्त प्रेम से मेरा गुणगान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वहाँ पर मैं स्थित हूँ, यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। तो इस प्रकार से जो संघ में आते हैं तो कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ते परस्परम, परस्पर जो है हमेशा कथा कीर्तन करते हैं। इसलिए जो भक्त होता है वो नमक के समान होता है, भक्त जो है नमक के समान, जब नमक होता है हम कहीं जब सब्जी बनती है या कोई दाल बनती है उसमें नमक दिखता नहीं है, लेकिन नमक नहीं होगा तो तुरंत आप बोलोगे अरे नमक नहीं डाला, डालने के बाद कोई बोलता नहीं, लेकिन नमक नहीं तुरंत पता चलता है, क्या होता है नमक से स्वाद आता है। तो वैसे लेकिन वो दिखता नहीं है, वैसे भक्त जो है नमक के समान होते हैं, वो भले आपको आगे देखेंगे नहीं, भले आपको कुछ बड़ा बड़ा कुछ करते समय शायद देखेंगे, लेकिन उनका जो अस्तित्व है अपने जीवन में जो है एक स्वाद लाता है, अपने जीवन में एक मिठास लेकर आता है, तो एक भक्त का स्वभाव होता है। इसलिए श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि डू नॉट ट्राई टू सी कृष्णा, सर्व कृष्णा सच अवे दैट कृष्णा वुड लाइक टू सी यू। आप भगवान कृष्ण को देखने की कोशिश मत करो। जैसे जब श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर एक बार जब कथा कर रहे थे तो एक व्यक्ति आए दर्शन किए और चले गए, तो जब वो जा रहे थे तो श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि आपको आँख मसाज कैसा लगा, मतलब खाली भगवान के विग्रहों का दर्शन, इसका मतलब ये नहीं कि दर्शन जो है भगवान का उसको कोई निम्न स्तर नहीं है, वो तो शुद्ध लक्षण है भक्ति का, लेकिन उसको कोई नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन खाली और दर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर कथा श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे तो उसका लाभ इतना नहीं होता है। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे हमें कार्य करने चाहिए जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। जैसे एक बार ऋषिकेश में मानव समाज संघ करके एक आश्रम है, वहाँ पर एक साधु थे, अंध थे, लेकिन जब भी सुबह का 7 बजे का दर्शन खुलता था जैसे 7 बजे दर्शन खुलता था तो अंध थे, लेकिन रोज सबसे पहले जाकर खड़े हो जाते थे। जो आंखें वाले हैं वो कभी कभी लेट आते थे लेकिन जो अंध थे वो सबसे पहले जाकर वहां खड़े हो जाते थे। एक दिन उसको उनको पूछते हैं कि आप देख नहीं पाते भगवान को, अंधे है तो आप देख नहीं पाते हैं विग्रह को, कौन सा ड्रेस पहना है, क्या है, कौन सा श्रृंगार किया है, आप देख नहीं पाते है। लेकिन आप सबसे पहले आगे जाके क्यों खड़े हो जाते। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान को देखने नहीं जाता हूँ, भगवान मुझे देखे इसलिए मैं मंदिर जाता हूँ। तो ये अगर हमारा उद्देश्य है कि भगवान मुझे देखे, हम अगर देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, भगवान ने ब्लू ड्रेस डाला है, भगवान ने वाइट ड्रेस डाला है, भगवान ने गोल्ड के पहने हैं या सिल्वर के श्रृंगार डाला है, ऐसी पगड़ी है, ये हम देखेंगे, ब्लैक मार्बल है, वाइट मार्बल है, कैसे भगवान सुंदर, और इससे ज़्यादा क्या देखेंगे। लेकिन जब भगवान देखेंगे हमें तो भगवान हमारा हृदय देखेंगे, हृदय में क्या है। और भगवान को जब हम, भगवान हमें देखने वाले हैं ये सोचकर जाएंगे तो जरूर हमारे जीवन को में सुधारणा करके हम लोग जाएंगे। भगवान को देखने जाएं तो हम देखने वाले हैं, लेकिन भगवान अगर हमें देखने वाले हैं, जब हम कोई शादी ब्याह में जाते हैं तो हम लोग अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें कोई देखने वाला है, और हमें कोई देखने वाला इसलिए हम लोग शादी ब्याह में अच्छे कपड़े पहन गए। अभी घर में भी तो कपड़े पहनते हैं ना, लेकिन इतना साधारण कपड़े पहनते, लेकिन शादी ब्याह में जाते क्योंकि लोग देखने वाले हैं। कभी कभी लोग बोलते भी, घर वाले बोलते थे अच्छा पहन के जा, देखने वाले या कोई देखने वाला, देखने आने वाले हैं तो अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो मतलब क्या है, हम अपने को सुधार कर अच्छा बनाकर हम जाते हैं। तो वैसे भगवान हमें देखने वाले, अगर हमारा भाव है तो हम अपने जीवन में कभी गलत काम करके नहीं जाएंगे, क्यों, भगवान देखने वाले हैं। या फिर मंदिर में जब व्यवहार करते हैं तो इतना अच्छा व्यवहार करेंगे ताकि भगवान उससे प्रसन्न होंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज हैं, कुंती महारानी है, अम्बरीश महाराज है, ये सब लोग अपने सामने भगवान को देखते हैं। अम्बरीश महाराज देख रहे, स्वयं कुंती महारानी भगवान को देख रही है, उनसे बात कर रही है, प्रहलाद महाराज भी उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो महान संत वैष्णव है एक ही भगवान से मांगते, क्या मांगते, भगवान आपके भक्तों का संग हमें दो। सोचिए भगवान सामने है लेकिन क्या मांग रहे हैं, आप कृपा करके हमें एक आपके भक्तों का संग दीजिए। एक क्योंकि देखिए महाप्रकाश लीला में जब चैतन्य महाप्रभु के साथ मुकुंद और सब लोग महाप्रकाश लीला में, सब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन दे रहे हैं और अलग अलग भेंट भी दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, तभी मुकुंद भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, दुर्योधन में आपने, दुर्योधन ने आपको सामने देखा, कौंस ने भी आपको सामने देखा, फिर भी आपसे, आपको शरण नहीं आया। दुर्योधन सामने देख रहा था भगवान को, फिर भी वो शरणागत नहीं हुए। कौंस पे देख रहा था सामने, फिर भी शरण नहीं हुए, उल्टा उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। ये मतलब नहीं कि भगवान को देखने से भक्ति आ जाएगी, भगवान को देखने से व्यक्ति शरण हो जाएगा। जब वो सुनेंगे, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने खाली सुनकर भगवान को शरण हो गए, खाली सुनकर ही, जैसे रुक्मिणी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, वो तो भगवान तो वहाँ द्वारका में है, और रुक्मिणी कहाँ है, महाराष्ट्र की है, हमारे महाराष्ट्र को बड़ा अभिमान होता है कि देखो हमारी महाराष्ट्र की लड़की द्वारका की पटरानी है मैं कल मदन मोहन में खड़ा था तो एक आदमी मुझे पूछता है कि यहाँ कौन है, मदन मोहन है, तो यहाँ पे वो कौन है, मतलब राधा रानी, तो ले यहाँ कौन है, ललिता है, बोले रुक्मिणी होनी चाहिए ना वहाँ पे महाराष्ट्र की है तो रुक्मिणी होनी चाहिए। बोले नहीं, ये तो वृंदावन का है, यहाँ पर द्वारका में तो रुक्मिणी होती है लेकिन यहाँ पे वृंदावन है तो वृंदावन में ललिता विशाखा है। बोला अच्छा, ठीक है ठीक है। तो महाराष्ट्र में जब मिलते हैं तो लोगों को रुक्मिणी का, क्योंकि हमारे उसका मैका जो है महाराष्ट्र का है, कौंडिन्यपुर वहाँ अमरावती में। तो लेकिन रुक्मिणी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, लेकिन भगवान को इतना अपना सर्वस्व जो है वो उनको दे चुके थे। कैसे? खाली जब नारद मुनि ऐसे ऋषि मुनि जब उनके महल में आते थे तो उनसे भगवान के बारे में सुनकर चर्चा कर वो उनसे उनको भगवान के प्रति प्रेम हो गया, उनके प्रति शरणागत हो गए। इस प्रकार से जब हम डायरेक्टली भगवान से मिलना चाहते हैं, डायरेक्टली हम भगवान से संपर्क करना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं है, लेकिन भक्तों के द्वारा हम जाते हैं तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम होना, शरणागत होना आसान हो जाता है। इसलिए जितना हमारे और बीच भगवान के बीच में जितना भक्त ज़्यादा है उतना हमारा जीवन सुरक्षित है, जितना हम डायरेक्टली भगवान से संपर्क रखना चाहते हैं उतना वो असुरक्षित है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से दिखा देते हैं, जो जगन्नाथपुरी में जब भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो गरुड़ स्तंभ जो था वहाँ से वो दर्शन कर, कई सारे लोग जो बीच में रहते थे, तो दूर से जितने ज़्यादा भक्त है उतना ज़्यादा अपना जीवन जो है सुरक्षित। अपने भौतिक जीवन में भी हम देखते हैं, जब शादी ब्याह होता है तो जितना बाकी लोग जो है शामिल होते हैं उसमें, तो आगे फ्यूचर में कुछ तकलीफ हो जाती है तो बाकी लोग संभाल लेते हैं, और खुद ही डिसीजन लेकर कर लेते हैं तो कई बार झगड़ा हो जाता है तो सीधा डाइवोर्स हो जाता है, कभी अपने एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो कई बार जो है जितने लोग इसमें शामिल है, जितने लोग हमारे संपर्क में रहते हैं कुछ कार्य में, खास करके भक्ति मार्ग में, जितने भक्तों का संग ज़्यादा है, जितने हमारे और भगवान के बीच में भक्त ज़्यादा हैं उतना हमारा जीवन जो है सुरक्षित होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा तीन रविवार से कि कैसे हम भक्तों के एक संग में आने से क्या होता है, एक तो हमें एक मार्गदर्शन मिलता है, जैसे एक हमने व्यास देव जी के बारे में सुना, श्री प्रभुपाद के बारे में सुना। फिर दूसरा होता है कि जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो हमारा शोक मोह भयापह, शोक से व्यक्ति मुक्त, शोक मोह और भय से मुक्त होता है। तीसरा हमने देखा कैसे हम हमेशा विजय का अनुभव करते हैं, भले कुछ आपको ज्ञान ना हो लेकिन भक्तों के संग में आते हैं तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप करने लगते हैं। हम यहाँ गोवर्धन कॉलेज में 5-10 साल से देख रहे, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसमें बहुत एक्सपर्ट लोग ऐसे नहीं है, लेकिन जेन्युइन भक्त है, इसलिए भगवान ये सारे कार्य करने की बुद्धि देते हैं। तो इसलिए यहाँ देखते हैं कि जब हम भक्तों के संग में आते तो विजय का, यशस्वी होने का अनुभव करते हैं। हमने देखा कि कैसे श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी और गुरुदास प्रभु, यमुना माता जी और मुकुंद प्रभु, जदुरानी माता जब लंदन में गए और उन्होंने एक इतने बड़े जो सिंगर थे उनका, उनको भी कृष्ण भावना में आकर्षित किया, प्रभुपाद के पास लेकर आए। और हम भक्तों के संग आते तो सेवा का मौका मिलता है, हृदय परिवर्तन होता है, और हमने चर्चा किया आज कि कैसे एक अज्ञान से दूर होकर हम ज्ञान के मार्ग पर चलने लगते हैं भक्तों के संग में आकर। और लास्ट में हमने देखा भक्तों के संग में आकर हम जब कथा कीर्तन करते हैं हमारा भाव जो है ऊंचा हो जाता है और भौतिक समस्या जो एक छोटे छोटे लगने लगते हैं उसमें हम ज़्यादा, कभी जैसा कांटा चुभता है तो पूरे शरीर में उसकी वेदना होने लगती है, कांटा यहाँ चुभा लेकिन पूरा शरीर उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, थोड़ा सा कोई हमें एक दुख होता है तो पूरा हमारा अस्तित्व जो है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। लेकिन जब हम सत्संग में रहते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं तो एक ऊंचा स्तर का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, भगवान की लीला का दिव्य ज्ञान, इसका श्रवण कीर्तन करने से क्या होता है भौतिक समस्या जो है छोटे लगने लगते हैं और हमारा जीवन जो है आनंद से भर जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।
हरे कृष्णा। श्रीमान रूप रघुनाथ प्रभु की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान रूप रघुनाथ प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें सत्संग का महत्व वापस से बताया है। तो हम आशा करते हैं कि सभी भक्तों को ये प्रवचन अच्छा लगा होगा और इस रविवार की तरह हर रविवार सुबह 10:30 से 12:30 जो रविवारीय सत्संग कार्यक्रम है उसमें आप सभी जन भाग लेंगे। सबसे पहले हम उन भक्तों और अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे जो पहली बार हमारे इस संडे फिश कार्यक्रम में आए हैं। हमारे स्वागत अध्यक्ष श्रीमान सर्वात्मा हरि प्रभु आपका विशेष रूप से स्वागत करेंगे और आपको श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी भगवान की तरफ से एक उपहार भी देंगे। अब हम पहली बार आए हुए भक्तों से निवेदन करते हैं कि वे अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, जिससे हम उनका समुचित स्वागत कर सके। जो भक्त पहली बार आज इस संडे फिस्ट कार्यक्रम में आए हैं, वे अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हरे कृष्णा। तो आप सभी जन अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए और संडे फिस्ट कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी गौरंग महाप्रभु श्री श्री राधा मदन मोहन जी से प्रार्थना करते हैं कि यह दिन आपके उज्जवल कृष्ण भावनामय जीवन का शुभारंभ बने और आप प्रत्येक रविवार इस रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में आकर हमें प्रोत्साहित करें।